ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में विमानन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इससे लोगों को यात्रा में आसानी हो रही है और कनेक्टिविटी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है और विमानन क्षेत्र इस मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। देश में लगभग 15% पायलट महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि वे दिन दूर नहीं जब एयर टैक्सी से यात्रा करना वास्तविकता बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने का ऐलान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी आधारित जैविक क्रांति के युग की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में वैश्विक जैविक भारत सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिस तरह एक समय में पश्चिमी देशों पर सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रभाव था, उसी तरह आज भारत को भी जैविक क्रांति से गुजरना पड़ रहा है। डॉ सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन एक वैश्विक आयोजन है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की यात्रा से अब तक रूसी सेना से 35 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अब रूसी सेना में करीब 50 भारतीय नागरिक हैं और भारत उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। भारत ने कल ओडिशा तट पर मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेश में निर्मित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का कल दोपहर ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण किया गया। ये युद्धपोत पर लगाए जाने वाली हथियार प्रणाली है और समुद्री लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमा पर विभिन्न हवाई खतरों को नाकाम करने के लिए डिजाइन की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने पाया है कि ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा विक्रेताओं का पक्ष लेकर प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्य कर रहे हैं। सीसीआई की जांच के परिणाम स्वरूप अमेजन पर 1027 पेज की और फ्लिपकार्ट पर 1696 पेज की अलग अलग रिपोर्ट आई है। दोनों पिछले महीने की है। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनियों ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जहां पसंदीदा विक्रेताओं को खोज परिणामों में उच्च स्थान दिया गया, जिससे अन्य विक्रेताओं को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि लगभग 50 बच्चों सहित 97 लोगों को चिकित्सा उपचार के लिए गजा से संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया है। अक्टूबर 2023 के बाद से गजा से यह सबसे बड़ी निकासी है। फलिस्तीन क्षेत्र में WHO के प्रतिनिधि रिचर्ड पीपाकोन ने लगभग 10,000 मरीजों के स्थानांतरण के लिए चिकित्सा गलियारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर मॉनसून का दबाव धीरे धीरे उत्तर की ओर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अगले दो दिनों तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश होगी। वियतनाम में यागी तूफान ने बड़े पैमाने में तबाही मचाई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 226 हो गई है और कल शाम तक 100 से अधिक लोग लापता हैं। तूफान से सबसे बुरी तरह प्रभावित प्रांत लाओ 98 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें नू गांव में अचानक आई बाढ़ से 47 लोग शामिल हैं। वहीं अन्य 81 लोग लापता हैं। काओ बैंग, येन बाई और क्वांग नेह में भी मौतें होने की खबर है। तूफान ने उत्तरी थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और चीन को भी प्रभावित किया और काफी नुकसान की खबर है। थाईलैंड में लगभग 9,000 घर प्रभावित हुए हैं। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और स्टिपल चेज धावक अविनाश साबले आज से बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुरू होने वाले 2024 डायमंड लीग फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एलियांज मेमोरियल वेंडैम में इस वर्ष के डायमंड लीग के अंतिम आयोजन में शीर्ष एथलीटों को उनकी प्रतिस्पर्धाओं में जीत के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकेगा। आज पहले दिन भारतीय स्टिपल धावक अविनाश साबले डायमंड लीग फाइनल में अपना प्रदार्पण करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।